परंतु महाकवि की दृष्टि सर्वसंग्रही होती है। आगे चलकर इसी निर्मल चंद्रिका को इस काम रूपिणी पुरी के स्वभाव के अनुरूप अन्य भूमिका लेनी होगी। यह शंख प्रभा दुग्धोपम मृणालवरणी चंद्र ज्योत्सना अपनी सरल उदात्त और सहज श्री को छोड़कर वैभव की विदग्धता का कलाप धारण करेगी। पृष्ठ संख्या 129 जो हंसवर्णी बनकर उदित हुई वह इस विलासपुरी में उतरकर पहले मयूर कलापी बनेगी और इसे अंत में विलास मर्दित होकर बासी पांडुरूक काक ज्योत्सना बनकर अस्त हो जाना पड़ेगा और तब रात्रि के अंतिम प्रहर में 12-12 विडाल चक्षु अंधकार घूमेगा और भीतर भीतर श्रृंगारी वर्तिका रात भर जलती रहेगी। आत्मक्षय के सुलगती अंतर्व्यथा के साथ इस पुरी की आशक्ति के साथ ज्योत्सना को भी तालमेल बैठा कर चलना होगा। इस आशक्ति का विदग्ध चित्र तो रावण के वध कक्ष दीपालोक से सज्जित अंतःपुर में मिलता है जहां ज्योत्सना की कोई भूमिका ही नहीं, पर बाहर से इसका क्या असर होगा? यह कौन सी मत्तता किस उन्माद की दृष्टि करेगी? इसका संकेत चंद्रोदय वर्णन के ही संदर्भ में महाकवि ने कर दिया है। धीरे धीरे सारी लंका चंद्राहत भाव में आ जाती है प्रकाश कांति और निर्मल स्वास्थ्य के साथ, पर अब चंद्रमा भोग उद्दीपन और ममता का स्रोत बन गया है। मदिरा और मांस भक्षण की इच्छा बढ़ रही है। पखावज पर बजती वीड़ा के साथ साथ गात्र वीड़ा भी अंतः कंपित हो उठी है और स्नायु मंडलों में मत्तता और आसक्ति का अपूर्व संगीत बज रहा है। कोई वक्षस्थल से वक्षस्थल टकराकर बलोन्माद का प्रदर्शन करता है तो कोई धनुष को इस बेमौके चढ़ाकर टंकार कर रहा है। लगता है कि भुजाएं वश में नहीं है, कुछ कर डालना चाहती हैं। दूसरी ओर कोई अपनी ही छवि से दीप्त कांता को निशीथ अंधकार के दृढ़ आलिंगन में बांध लेता है तो कोई तप्त कंचन वर्णी प्रगल्भा दीप जलाकर प्रतीक्षारत है। लंका में कहीं रंग है, कहीं प्रतिरंग है, कहीं विरंग है। बाहर भीतर चारों ओर बहुवर्णी रात छमाछम नृत्य कर रही है। सारे लीला व्यापार उसके ही कलाप हैं। चंद्र ज्योत्सना के नित्य कलाप का यह अंतिम मंडल है। अंत में महाकवि कहता है, रात धूसर पांडुर होती जा रही है पर आह अभी तक जानकी ही नहीं मिली और वानर वीर चांदनी के अंतिम चरण में ही रावण के अंतःपुर में प्रवेश कर जाता है। दो तिहाई रात तो लंका की विशाल एवं ज्योत्सना आहत नगरी में घूमते घूमते छानते खोजते बीत गई। अब इस महापुरी का केंद्र रावण के प्रसाद का अंतःपुर शेष बचा है और वानर वीर बड़ी सावधानी से अंतःपुर में प्रविष्ट हो जाता है। इसके बाद असंख्य दीपों के सतरंगी कलाप से झिलमिल इन विलास कक्षों का वर्णन करते समय महाकवि बाहर छीण होती हुई ज्योत्सना का एक बार भी नाम नहीं लेता कि कब उसका 16 श्रृंगार से युक्त श्वेत मयूर कलाप अस्त हो गया, कब वह डूब गई, कब लंका की चंद्राहत मुग्ध मनोदशा का अंध निद्रा में अवसान हो गया। अब कवि दूसरे प्रकार के मिजाज या मूड की सृष्टि करने में रत हो जाता है। वह ज्वलंत रूप सज्जा के मध्य दग्धता घर्षण और उच्छिष्टता का मूड रचने की चेष्टा करता है। रावण का अंतःपुर समुद्रमीव गंभीरम समुद्रमी निःश्वनम दुर्गम अतलोपम अंतःपुर है जिसमें कोई पर पुरुष डूबे तो फिर थाह न पा सके। कभी कभी वाल्मीकि का एक ही वाक्यांश बहुत बड़ा संकेत दे जाता है और तब शेष चित्र पाठक की कल्पना अपने आप पूरा कर लेती है। रावण के अंतःपुर को समुद्रमीव गंभीर समुद्रमीव निःश्वनम कहकर वे दोनों एक श्लोक में रीतिबद्ध ढंग से उपमा उपमेय समानता बताते हुए आगे बढ़ जाते हैं। पर रस प्रवण मन इस बिंब को कल्पना के धरातल पर ग्रहण करके रावण के अंतःपुर का अद्भुत दृश्य देखता है। पृष्ठ संख्या 130 रत्नाकर की ही तरह वह अंतःपुर प्रमदा रत्नों से भरपूर महोदधि की तरह वह ध्वनि प्रतिध्वनि युक्त नाद संकुल और अतल रहस्यमय है और रावण के क्रुद्ध होने पर या कोई विशेष घटना घटने पर अचानक शांत मूक गिराबद्ध भी हो जाता है जैसे मध्याह्न का शांत सागर हो। इसके स्वभाव में इसके अपने पूर्व के रत्नाकर, पश्चिम के सागर तथा दक्षिण के महोदधि तीनों समुद्रों की अभिव्यक्ति होती है। यह उनके मिलन बिंदु पर जो स्थित है, जैसे समुद्र में गहराती हुई लहरें उठती हैं नाद की एवं अविराम गर्जन की, घटा पर घटा तहिभूत होती जाती है, उसी के ऊपर ऊपर दूर से बहती हवा का हु हु स्वर एवं दूरागत खींची ध्वनि सिटकारी भरती हुई, फिर अंतिम क्षण में तीव्र सीटी जैसी ध्वनि सुनने को मिलती है। और इन सब गर्जन तर्जन ध्वनियों महाध्वनियों के अगल बगल समुद्री पंछियों का क्रोंकार उठता है, साथ ही कभी कभी उनके पी पी स्वर एवं उनके कोमल कलरव भी सुनाई पड़ते हैं। रह रहकर सब कुछ मिलाकर एक अद्भुत अंतर्ध्वनन आर्केस्ट्रेशन का स्वाद मिलता है, पर इससे भी अद्भुत अंतर्ध्वनन बजता है रावण के इस प्रतापशाली अंतःपुर में। चारों ओर नौकरों चाकरों का विविध कर्म कोलाहल शोरगुल है, पर उसी के मध्य कहीं नेपथ्य से गुरु गंभीर पखावज के साथ बजती वीणा के स्वर आ रहे हैं और गंधर्व कंठों से तालों का पदपाठ भी कड़क रहा है। यों सुनने वालों को पता नहीं चल पाता है कि किस दिशा से कहां से यह ध्वनि आ रही है, किन्नरों का अभ्यास कक्ष किधर है। तो दूसरी ओर जाने पर राक्षस किविंगड़ों के कंठों से प्रशस्त संस्कृत में रुद्र स्तव या स्वती पाठ या कीर्तिगान के छंद पर छंद समुद्र तरंगवत घहराते हुए ज्ञात होते हैं। तो तीसरी ओर किसी गैल से किसी प्रमदा के नुपुरों और कोटि मेखला की झंकार उसके नृत्य शिक्षित पगों के साथ छमाछम एक ओर से दूसरी ओर निकल जाते हैं। सुनने वाले के मन में उस ध्वनि रूपा अदृश्य नारी के प्रति एक कौतूहल जागता है, पर मात्र क्षण भर के लिए, क्योंकि उसके अगले ही क्षण वह दूसरी ओर निकल गया रहता है, जहाँ अपने को अपश्रव्य अपशब्दों की धारा में गाली गलौज और चाकरों की कोलाहल के बीच छाती भर नहीं हो तो कमर भर धंस पाता है। उसे लगता है कि वह अंतःपुर में नहीं बल्कि समुद्र के किनारे की छाड़न या दलदल में फंसा है, जिसके कीचड़ में सरीसृप और मकर नक्र झख लोटपोट कर रहते हैं और पार्श्व से वायुविकल महोदधि की क्रुद्ध फुत्कार आ रही है। तो वाल्मीकि ने इस अंतःपुर के लिए ठीक ही लिखा है, समुद्रमीव गंभीरम समुद्रवीमीव निःस्वनम। यह समुद्रोपम अंतर्ध्वनन और कोलाहल तभी तक है जब तक रावण दरबार में, पूजा गृह में या मंत्रणा गृह में है। सांध्य रुद्रोपासना के बाद ज्यों ही वह प्रवेश करेगा, उसके आते ही आते सब कुछ शांत निःशब्द, सब कुछ तालबद्ध नृत्यबद्ध एवं अनुशासित। तब मारे भय के यह समुद्रोपम अंतःपुर निःस्वप्न निःशब्द हो जाएगा। मारुति इसी दुर्गम अतल अंतःपुर में धंसा है, ऊंच चूब हो रहा है, बाहर बाहर ज्योत्सना अस्त हो गई है, पर भीतर स्तब्ध स्तब्ध पर प्रदीप जल रहे हैं। अभी तक पांडूर वरणी उदास श्री मात्रा लवण्य शेष रामचंद्र की वधु सीता का पता नहीं चला। मारुति क्षण भर के लिए खिन्न हो जाता है, निष्फल श्रम निष्फल साहस निष्फल विक्रम। मारुति उन स्तंभों की चित्रकारी और मूर्ति टंकड़ की ओर दृष्टि देता है, यत्र तत्र सोने और चांदी के इहामृग भेड़िए सजे हैं, पात पर पात शिकारी की को विधरणी करती भूखे कुत्तों की आकृति उकेरी गई है, अंगूर की लताओं में सांप चुनते हुए मयूर स्तब्धों का के टोड़ या पैनेल पर अंकित हैं, गवाक्षों पर कंकालिनी चामुंडा की मुख मूर्तियां बैठाई गई हैं, एक कतार में टमटमाती जीभ निकाले आकर्षण मुख फाड़े चमचमाते तांबे की श्वापद प्रतिमाओं पर रोशनी झर रही है और उसकी चमक में उनके मुख और विकराल और तमतमाए हुए जान पड़ते हैं।